हमारी सत्संग के लिए जो दिल्ली एवं आसपास से नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लिख के लगा दी गई है। मेहरबानी करके जाने से पहले देख लीजिएगा जिनके नाम स्वीकार हुए हैं, वे कृपया हमारी सत्संग के लिए हरिद्वार पधारें। धन्यवाद। श्री रमान जी की रचना का शुभारंभ हो गया है। राजा दशरथ का राज्य किस प्रकार का है, अयोध्या नगरी कैसी है, उसका वर्णन शुरू हुआ है। कल महर्षि बता रहे थे राम कथा अघरणी गंगा, राम कथा तीर्थ त्रिवेणी, दो शब्द प्रयोग किए महर्षि वाल्मीकि जी ने राम कथा के लिए। कल कथा की ही चर्चा चल रही थी साधक जनों। कथा उसे कहा जाता है जो हमारी थकान को दूर करे, या कथा जो सुनने मात्र से श्रवण मात्र से हमें विश्राम की अनुभूति करवाए, वह कथा। दिन भर की थकान शारीरिक, बुद्धिजीवों की बौद्धिक थकान कथा से दूर होती है, ठीक होती है। इस कथा को महर्षि वाल्मीकि जी ने गंगा नदी से अघरणी गंगा, पाप हरने वाली गंगा के सम कहा है। ये कैसे कहा है उन्होंने? आप सब जानते ही हैं, मान्यता है गंगा जी में पापी स्नान करता है तो उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसी हमारी भी मान्यता है। स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं। तो जब कथा की तुलना गंगा से की गई है तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि राम कथा श्रवण से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। प्रश्न उठता है, न जाने आज तक करोड़ों से भी अधिक संख्या में गंगा जी में स्नान कर चुके होंगे, क्या किसी को ऐसा महसूस होता है कि किसी एक व्यक्ति के पाप धुल गए? एक बार की यात्रा में व्यक्ति अनेक बार भी स्नान करता है, न जाने वह व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति आज तक कितनी बार गंगा जी में स्नान कर चुके होंगे, क्या कोई ऐसा दावे से कह सकता है कि उसके पाप धुले? तो किसके पाप धुलते हैं? शास्त्र ने जो कहा है वह गलत तो नहीं कहा, जो मान्यता है वह गलत नहीं है। तो किसके पाप धुलते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि पाप धुलते हैं, लेकिन किसके धुलते हैं देखना यह है। गंगा जी साधक जनों अवतरित होके भगीरथ जी महाराज ने गंगा जी को अवतरित कर लिया है, तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों पे आ गई हैं, समा गई हैं आके, और कोई जगह नहीं थी तो विवेक युक्त बुद्धि ने गंगा जी को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। ब्रह्मा जी कौन हैं? बुद्धि के, विवेक के देवता हैं। तो बुद्धि जिस पे विवेक है उस कमंडलों पे गंगा जी आके समा गए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल रही। मुझे धरती पर मत भेजिएगा, धरती फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी। मुझे कोई धरती पर ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरे वेग को सहन कर सके, गंगा जी ब्रह्मा जी से कहती हैं। ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक गंगे से कहा, दीदी मैं कुछ प्रबंध करूंगा। तो इस वेग को, इस ज्ञान रूपी वेग को जो कथा के माध्यम से, उससे तुलना है ना, कथा के माध्यम से जो हमें मिलता है उस ज्ञान के वेग को कौन ग्रहण कर सकता है? उसी के पाप धुलेंगे जो गंगा जी के वेग को, ज्ञान के वेग को सहन कर सकेगा, ग्रहण कर सकेगा। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में विश्वास के प्रतीक हैं, भगवान शिव अपनी जटाओं में उन्हें धारण कर लिया। उसके बाद वहां से भी आगे निकलना है, तो आगे निकलना भी इतना आसान नहीं मान रहे गंगा जी। गंगा जी कहती हैं कोई पार्वती जैसा श्रद्धालु मिले तो मैं बहू। तो कथा सुन के या गंगा जी में स्नान करके किसके पाप धुलते हैं? जो विवेक युक्त है, जिसकी बुद्धि विवेक युक्त है, जो विश्वासी है एवं श्रद्धालु है। जिसको विश्वास ही नहीं है कि गंगा जी में स्नान करने से मेरे पाप धुलेंगे, वह युग युगांतर भी स्नान करता रहे तो उसके पाप कभी धुलेंगे नहीं। तो विश्वासी चाहिए, श्रद्धालु चाहिए। संत महात्मा यहां समझाते हैं, मानस के, रामचरित मानस के प्रथम वक्ता भगवान शिव स्वयं। लेकिन ये ज्ञान, ये कथा किसी को सुनाई नहीं, अपने मानस में रखी, इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। राम जी का वह चरित्र जो भगवान शिव ने अपने मानस में संभाल के रखा हुआ है, उसे रामचरित मानस कहते हैं। तुलसीदास ने इस रचना को रामायण नहीं कहा, तुलसीदास की ये रचना रामचरित मानस है। महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण जी है, उनका नाम उन्होंने रामायण रखा, लेकिन रामचरित मानस नाम रखा गया। तुलसी द्वारा उन्होंने रामायण नाम नहीं रखा, मानो भगवान शिव को, शिव की ओर संकेत करते हुए राम कथा, राम चरित्र जो भगवान शिव ने अपने मानस में संभाल के रखा, उसे राम चरित मानस कहा जाता है। वक्ता कौन बने? भगवान शिव। श्रोता कौन बने? तब तक चुप रहे जब तक श्रद्धा के प्रतीक पार्वती उन्हें सुनने के लिए नहीं मिले। यहीं से साक्षरों रामचरित मानस का शुभ आरंभ होता है। उसके बाद वक्ता याज्ञवल्क बने, भरद्वाज जी को सुनाई, काकुशुंडी बने, गरुड़ जी को सुनाई। उसके बाद ये गुरु परंपरा एक से एक चली, लेकिन प्रथम वक्ता भगवान शिव को कहा जाता है। अतएव पार्वती जैसा श्रद्धालु और भगवान शिव जैसा विश्वासी जब तक ना होगा, तब तक ये रामचरित हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता, हमारे जीवन में उतरता नहीं है। हम जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मानो आजकल कथाएं जो होती हैं, यही प्रायः देखा जाता है कि लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, सो भी जाते हैं, ऊंग भी लेते हैं। मनोरंजन ज्यादा है, कथा का सार समझने वाले, ग्रहण करने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों? न वक्ता ही वैसे जैसे भगवान शिव और न श्रोता ही वैसे जैसे मां पार्वती। कथा के लिए साक्षियों बहुत कुछ कहा जाता है। त्रिवेणी कहा है, मानो राम कथा में कर्मयोग का, ज्ञान योग का एवं भक्ति योग का समन्वय है। त्रिवेणी, तीन धाराएं, तीन नदियों का संगम, ये राम कथा। एक तुलसी से किसी ने कहा, महाराज बहुत खोज करने के बाद भी मुझे कोई सतगुरु नहीं मिल रहे। तुलसीदास जी ने कहा, रामायण जी से दीक्षा ले लो। तो रामकथा गुरु भी है, सदगुरु भी है। तुलसी ने समझाया रामचरित्र सदगुरु हैं, गुरु महाराज हैं, उनसे दीक्षा ले लो, पर्याप्त है। वे क्या सिखाएंगे? उनसे कर्म योग सीखो, उनसे भक्ति योग सीखो, उनसे ज्ञान योग सीखो, उनसे सीखो पुत्र कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, एक शत्रु कैसा होना चाहिए, एक सेवक कैसा होना चाहिए। इतना ज्ञान सामान्य गुरु नहीं दे सकते जितना भगवान राम का चरित्र देता है। तो तुलसी कह रहे हैं इनसे सीखो, इनको अपना गुरु धारण करो, तुम्हें और कोई गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रामकथा सदगुरु भी है। रामकथा जहां पापों का हरण करती है, पाप हरता है, ताप हरता है, क्लेश हरता है, वहां ये सदगुरु भी है। विश्राम देती है रामकथा। कथा उसे ही कहा जाता है जो हमारी थकान को दूर करे। किसी ने ये बात तुलसी की सुन के तो उनसे प्रश्न किया, क्या अर्थ है इसका कि कथा सुलाती है? तो तुलसीदास अपना उदाहरण देते हैं, कहते हैं बंधुवर मैं एक क्या संत नाभदास को मिलने गया था, वो आश्रम में नहीं थे, मेरे पास कुछ करने को नहीं था, जब तो चलता ही रहता होगा तुलसी का, कहने की जरूरत नहीं, मैं सो गया, नींद आ गई, सो गया मैं। नाभदास आए, आके मुझे सोए हुए देखा और कहा अरे वाह तुम सो रहे हो, संत लोगों को जगाते हैं और तुम सो रहे हो, सोए में सो रहे हो तो दूसरों को क्या जगाओगे। नाभदास तुलसीदास के प्रति सदा ईर्ष्यालु रहे हैं भीतर से, ऊपर से जैसी भी मित्रता रही हो लेकिन अंदर से ईर्ष्या रही है उनके अंदर। तो उनके शब्द इसी प्रकार के, कहा संत तो औरों को जगाने के लिए इस संसार में आते हैं और तू स्वयं ही सो रहा है। तुलसीदास यहां बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं महात्मन क्षमा करें, बहुत गहरी नींद सो रहा था, आपने जगा दिया, जगाने वाले संत बहुत हैं, मैं तो सोने वाला हूं और सुलाने वाला हूं। राम कथा विश्राम देती है। तुलसी यहां कहते हैं भाई जागे वो जो राजा है, रात को कौन जागे, वह जो राजा है जिसे चिंता सोने नहीं देती, जागे वह जो योगी है, जागे वह जो योगी है जिसने योग साधना है, जिसने साधना करनी है, जागे वह जो भोगी है जिसने भोगी जीवन व्यतीत करना है, वह जागे। तुलसी सुख से सोवे राम भरोसे। तुलसी कैसे सोता है? सुख से, राम भरोसे। उसे किसी प्रकार की ना कोई चिंता है ना कोई इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, वह राम भरोसे अपना जीवन व्यतीत करता है। छोटे से लेके बड़े तक, विद्वान तक, अज्ञ से लेके महाज्ञानी तक, जब बौद्धिक थकान आदमी महसूस करता है तो तुलसीदास यकीनन कहते हैं कि राम कथा सुनने से उन्हें विश्राम मिलेगा। राम कथा देवी सज्जनो ऐसी मीठी है, मल विक्षेप अवर्ण आज आपने पढ़े, उनको दूर करने वाली, सब प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर करने वाली ये रामकथा। एक साधक के जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उन सबको रामकथा दूर कर देती है, मात्र पढ़ने से नहीं, मत सोचिएगा। तुलसीदास का ऐसा विश्वास नहीं है, संतों महात्माओं का ऐसा विश्वास नहीं है, जिन्होंने व्यवहारिक ढंग से साधना साधी है उनका विश्वास है कि जो कुछ पढ़ा है उसे अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक ये लाभ आपको जो वर्णित हैं वे लाभ आपको मिल नहीं पाएंगे। भगवान राम के अपने श्रीमुख वाक्य हैं, मैं माला घुमाने वालों को भक्त नहीं मानता। मैं माला घुमाने वालों को भक्त नहीं मानता। जो मेरे सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो मैंने करके दिखाया है, वह करने का वायदा करते हैं, वह करते हैं, तो मैं उन्हें भक्त स्वीकार करता हूं। कितनी बड़ी घोषणा है। परमेश्वर की कृपा की प्राप्ति भी साधक जनों उन्हें ही हुआ करती है जो सत्कर्म करते हैं एवं राम नाम जपते हैं। इन दोनों का समन्वय है। सत्कर्म अर्थात राम के अनुसार कर्म, राम की आज्ञा, राम के सिद्धांतों के अनुसार, जो राम जी ने करके दिखाया है उसके अनुसार यदि जो आप कर्म करते हैं उन्हें सत्कर्म कहा जाता है। तो सत्कर्म एवं राम नाम की उपासना दोनों अनिवार्य है साधना की सिद्धि के लिए। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।